अच्छा, अब यहाँ पे आप एक बात नोट करेंगे कि यहूद को भी किताब दी गई, आज हमें भी दी जा रही है। यहूद को जब किताब मिली ना, तो उसके मुकाबले में उन्होंने तीन रवैये शो किए, थ्री बिहेवियर्स थे ज्यूस के जो किताब के बाद उतरे। पहला क्या था? अहद को तोड़ना, अहद शिकनी, किताब को उठाकर एक तरफ कर दिया। ये जो भी हमने वाक्या देखा है ना, ये अहद को तोड़ने वाली बात है, ठीक है। दूसरा इनका रवैया कहता है हीला साजी। अब पहले मैं तो कहती नहीं, ये किताब बड़ी मुश्किल है, हम नहीं पढ़ते। अल्लाह ने कोहे तूर ऊपर खड़ा कर दिया तो मान गए, ये पहला रवैया। फिर जब किताब का बराह रास्त इनकार नहीं कर सके, तो दूसरा इनका रवैया क्या था? बहाने करने लगे, हीला साजी। अच्छा ऐसे नहीं, ये हुक्म ऐसे नहीं, वैसे नहीं, दिस एंड दैट। इस पे अगला वाक्या बार है आयत नंबर 65 में, वलकद अलिम तुमुल्लसी ना तो मिन कोफे, सब से लेके आगे तक। तीसरा एक रवैया भी नोट कर लें, फिर हम आयत शुरू करेंगे। तीसरा रवैया क्या था? हुज्जतबाजी, हुज्जतें बड़ी करते थे दीन पे। उस पे आप देखेंगे इस वाक्य के बाद वाला वाक्य जो गायक है वो पेश होगा, कि इन लोगों के किताब के मामले में जो रवैये थे वो बड़े ही अजीबोगरीब थे। कभी तो इन्होंने किताब को मानना ना चाहा, और कभी क्या किया कि उन्होंने किताब में जो हुक्म आए थे उसको बिल्कुल बदल दिया। आइए अब ज़रा दूसरे रवैये की दलील में जो वाक्य आता है उसको देख लेते हैं, आयत नंबर 65 और 66 में ये वाक्य, वलकद अलिम तुम, और तुम खूब जान चुके हो। किसको कहा जा रहा है? मदीना के यहूद को। देखिए ये हाजिर के सीगे हैं, ये फ़र्क नहीं पता होगा, सारी ज़िंदगी गलत तफसीर करेंगे और कराएंगे। अलिम तुम हाजिर का सीगा है, सामने प्रेजेंट मौजूद है। अल्लाह ताला नबी सल्लम के दौर के यहूद को कह रहे हैं तुम जान चुके हो, तुम्हें पता है, यानी तुमने अपने बाप दादा की जुबान से वो कहानियां सुनी हुई हैं। क्या? अल्लजी ना तदो, उन लोगों की बात जिन्होंने ज्यादती की। किन में से थे वो लोग? मिनकुम, तुम ही में से थे, यानी बनी इसराइली में से थे। कब ज्यादती की थी? फिर सब थी हफ्ते के दिन में। फिर क्या हुआ? फकुल ना लहुम कूनू किरादतन खासेइन, फिर हमने तुम्हें कहा कि बन जाओ बंदर, धुतकारे हुए। तुम्हें जो हुक्म दिया गया था तुमने उसको बदल दिया, उसकी सजा में हमने तुम्हें बंदर बनाया। कौन से? धुतकारे हुए। क्यों बंदर बनाया, कुछ और क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि फजाल नाह नकाल लिमा बैन यदईहा व मा खल्फहा, बस बना दिया हमने इसको इबरत का सामान बाद में आने वाले लोगों के लिए भी और पिछले गुजरे हुए लोगों के लिए भी। क्या सबको इबरत मिल जाती है इन वाक्यात को पढ़ने और सुनने से? नहीं। व मौइज़त लिल मुत्तकीन, नसीहत तो सिर्फ मुत्तकी लेते हैं, तकवा वालों ही को नसीहत मिलती है, आम लोगों को नहीं मिलती। अभी तक जितने वाक्यात आपने पढ़े हैं ना, ये वादिय तीह के थे, फिरौन के डूबने से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी तक, या फिर यूशे बिन नून की ज़िंदगी जबकि वो वादी यतीम में थे। अब ये वाक्य जो ये हज़रत दाऊद के दौर का है, ठीक है। और हुआ क्या था कि एक बस्ती थी, ईला नाम की बस्ती थी, आज भी मौजूद है फ़लस्तीन के करीब ये बस्ती। वहाँ पे जो लोग थे उनका पेशा जो था वो फ़िशिंग था, मछलियाँ पकड़ के अपनी रोज़ी रोटी करते थे। चूँकि हफ्ते का दिन इन्होंने अपने लिए होली डे रखा था, पीछे हम इसके अल्फाज की वजाहत में देख चुके, तो इनको हुक्म क्या था कि हफ्ते के दिन मछलियाँ नहीं पकड़नी। ये बिल्कुल वैसे ही हुक्म है जैसे आज हमारे लिए जुमे की नमाज के दौरान का वक्त है। पूरा जुमा नहीं हमें कहा, सिर्फ जुमे की नमाज, खुतबे का जो दौरान वक्त होता है, इस वक्त कोई भी तिजारत करना हलाल नहीं है, ठीक है। इनको कहा कि तुमने मछलियाँ नहीं पकड़नी। आजमाइश इनकी देखिए कैसी हुई, और आजमाइश हमेशा होती है, और वो क्या कि हराम माल जो होता है वो आसानी से हाथ आता है और हलाल में ज़रा मुश्किल होती है। हफ्ते के दिन अल्लाह ताला ने इनको किस तरह से आजमाया कि इतनी ज़्यादा मछलियाँ पानी में आने लगी कि सर उठा उठा के पानी में से देखती थी। सूरत अल आराफ में लफ्ज़ आता है शुर्रा, और ये वाक़या सबसे ज़्यादा तफसील से कुरान पाक में जहाँ आया है वो सूरत अल आराफ की आयात है, कि जहाँ अल्लाह ताला ने कहा कि इतनी ज़्यादा मछलियाँ थी कि बाहर लपकती थी। कुछ अरसा तो सब्र करते रहे कि भाई नहीं, गुनाह है, हम नहीं पकड़ेंगे, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते जाते हैं तो इंसान फिर यूज़ टू होते हैं। अब सरे आराम तो जरूरत ना हुई कि जाके मछली पकड़ने लगें, इतनी शर्म थी अभी उस दौर में भी कि अल्लाह के हुक्म को सरे आम नहीं टोकते। ये तो आज के, अल्लाह माफ़ करे, मुसलमानों को जरूरत हो गई ना कि वो सरेआम भी गलत काम करें तो कहते हैं अच्छा देख लेंगे जब अल्लाह हमसे पूछेगा, ये हमारा और उसका मामला है, तुम कौन होते हो। लेकिन इनमें उस वक़्त तक कभी इतना लिहाज था कि एकदम उसको नहीं तोड़ा, करें क्या। जो लोग स्मार्ट होते हैं ना, फिर वो तरीके भी ऐसे निकाल लेते हैं कि जो दूसरों को नहीं सोचते। कुछ लोग जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अक्लमंद थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, मछलियां पकड़ने को मना किया ना, हम नहीं पकड़ते। करते क्या है, जुमे की रात को वहां जाके जाल लगाते। पहला स्टेप इन्होंने क्या किया कि दरिया के किनारे गड्ढे खोदे, थोड़ी जमीन खोदी। आप सबको भी मालूम है कि जब दरिया में या समंदर में तुगयानी आती है तो पानी आगे जाता है, फिर वापस पलटता है। अब हफ्ते के दिन चूंकि पानी में जोश होता था तो पानी आगे तक आता, जब पानी वापस जाता ना, पानी ऊपर से गुजर जाता, मछलियां चूंकि भारी होती हैं वो घड़ों में गिर जाती, और उन घड़ों में इन्होंने चुपके से जाल रखे होते थे। रात को जुमे को जाल लगाते, हफ्ते का सारा दिन कुछ ना करते। जब हफ्ते का दिन गुजरता, इतवार की सुबह शुरू होती, तो जाके अपने जाल पकड़ लेते और मछलियां बेचते। कोई पूछता भाई ये क्या किया, तो कहते देखो हमने तो हफ्ते को कुछ किया ही नहीं, जाल हमने लगाया जुम्मे को, पकड़ा इतवार को, हमने क्या किया। अब अल्लाह ने खुद ही भेज दी मछलियां, तो हम क्या करें। ये था इनका हीला। इस पे अल्लाह ताला को इतना गजब आया कि जो इन्होंने किया ना, अल्लाह ने वही इनके साथ किया। इन्होंने अल्लाह के हुक्म को डिस्टॉर्ट किया, तोड़ मोड़ के ना गोल मोल कर दिया, हीला साजी कर दी। अल्लाह ने भी शक्लें तोड़ मोड़ दी, बंदर बना दिया, लिटरली बंदर बने। और रिवायात में आता है कि इनके जिस्म इंसानों के थे, शक्लें बंदर बनी और साथ दुमे निकल आई। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ही का गालिबन कौल है, कहते हैं कि इनके बूढ़े लोगों को सुअर बनाया गया और जवानों को बंदर बनाया गया। सूरह मायदा में आप पढ़ेंगे खिंजीर भी बने थे और बंदर भी बने थे। अल्लाह को ये बात इंतहाई नापसंद आई कि इन लोगों ने अल्लाह के हुक्म को इस तरह से बदल दिया कि जिसके बाद इनको फ़ायदा ना हुआ। अगर आप इस वाक़े की तफसीलात पढ़ना चाहें तो सूरत अल आराफ की आयत नंबर 163 से लेकर 166 तक पढ़ सकते हैं। अब हुआ क्या कि जब लोगों ने ये गलत काम किया तो तीन गिरोहों में कौम बट गई। एक तो जो थे सरेआम ये काम कर रहे थे, दूसरे वो थे जो ये काम नहीं कर रहे थे लेकिन इनको समझा रहे थे कि देखो ये तो बहुत बड़ी बात है, अल्लाह के हुक्म को तुम इस तरह बदल रहे हो। तीसरे जो थे ना, वो बेचारे न्यूट्रल रहने वाले लोग थे जो सबको खुश रखना चाहते, उन्होंने कहा चुप करो, उनको भी खुश करो, उनको भी खुश करो। और ये बहुत ही बुरी आदत होती है कि दोनों तरफ अपनी सेफ्टी रख लो, ये भी कह दो कर लो और वो भी कर लो ना कर लो। मुझे यहाँ किसी की बात याद आ गई, अल्लाह ताला माफ़ करे, कि कोई बुज़ुर्ग थे या पीर साहब थे, तो लोग उनके पास जाके प्रेग्नेंट औरतें पूछती थी कि मुझे बेटा होगा कि बेटी होगी, तो पीर साहब जो थे वो उनसे कुछ नजराना वसूल करते और उसके बाद कहते कि तुम्हारा बेटा, लंबा करके बोलते थे लफ्ज़ बेटा होगा, और साथ ही कहते थे या बेटी होगी। अब होता क्या कि दोनों में से एक ही काम होना था ना, जब बेटा होता तो चाहने वाले कहते देखा पीर साहब ने बेटे का लफ्ज़ लंबा कहा था ना, तो फिर बेटा इसलिए हुआ है, और अगर बेचारी कभी बेटी होती तो कहते आखिर बेटी का भी तो नाम लिया ही था ना। तो ये हीले होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी से ये आदत निकाल दें, दो टोक स्ट्रेट फॉरवर्ड, अल्लाह ताला कहते हैं कुलू कौलन सदीदा, सीधी बात करो, ये दो टोक बातें, ये भी ठीक तो वो भी ठीक, ये भी गलत तो वो भी, ये अच्छा नहीं होता। इनका ये जुर्म था, इन्होंने क्या कहा कि ना इनको कुछ कहो और ना पकड़ो। जब अल्लाह का अजाब आया, कहते कि एक वक्त आया, पूरा वाक्या है उसमें आप पढ़ेंगे, कि दीवार खींच ली। इतनी कराहत होनी चाहिए बंदे को गलत काम से, गुनाह से, कि दीवार खींच ली। इन्होंने कहा देखो भाई हमें खौफ आ रहा है कि तुम अल्लाह के किसी अजाब का शिकार ना हो जाओ, तो हम तो तुमसे अलग अच्छे, दीवार खींची कि हम बच जाएंगे। और ये ईमान का बहुत गहरा एक असर होता है कि इंसान ना खुद खुद गुनाह कर सकता है, ना गुनाह का साथ देता है, ना गुनाह पे किसी को देख के मुतमईन होता है। अब सुबह में वो दरवाज़ा खोल देते या आते जाते, तो इस तरह कहते हैं कि एक दिन सुबह के वक्त दीवार के उस पार बड़ी खामोशी देखी, इनको कुछ दिखा नहीं। जब थोड़ी देर गुजरी तो इनको फिक्र लाहक हुई, और जब इन्होंने दीवार के ऊपर से झांका तो उधर के जो लोग थे जिन्होंने ये काम किया था, तो वो बंदर बना दिए गए थे। और कहते हैं कि दरवाज़ा खोल के जब उन्होंने देखा, उनको पहचानते भी थे, बंदर बने थे लेकिन शक्लों से पहचान भी मौजूद थी, और उनकी आंखों में आंसू थे। और उस वक्त रिवायात में आता है कि जब उनसे कहा गया कि क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था, तो उस पर जवाब में सर हिलाते थे। اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ابن مسعود کی روایت ہے صحیح مسلم میں، کہ کیا جو آج ہمارے دور کے بندر ہیں کیا یہ وہی مسخ شدہ لوگ ہیں جن کی شکلیں بدلی گئی تھیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو 3 دن کے اندر اندر ان کی نسل ختم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا آج کے جو بندر ہیں اس میں ایسی کوئی چیز نہ سمجھی جائے، ہمارے لیے اس میں بہت سارے سبق ہیں. دیکھیے، پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پکڑنا چاہے تو بندر بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ آج بھی یہ بیماریاں موجود ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار ہوگا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ یہی کام کریں گے. ایک بیماری ہے، کوچینو اس کا نام ہے. کہتے ہیں کہ پہلے 106 درجے کا بخار ہوتا ہے، 106 ڈگری کا. پھر اس کے بعد جسم کے اوپر براؤن کلر کے بال اگنے لگتے ہیں اور جلد نیچے سے سکڑتی ہے، اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کی شکل بندر کی ہوتی، چہرے کی کھال کھنچ جاتی ہے جب، یعنی جھریاں پڑتی ہیں، اور 8 سے 10 گھنٹے کے اندر پھر وہ مریض مر جاتا ہے. اور آج کل ایسی بہت ساری تکلیفیں دکھنے میں آتی ہیں کہ جس میں انسان کی شکل بالکل بدل جاتی ہے. یہ شکل کس نے دی؟ تو کیا وہ نہیں دے سکتا دوسری؟ آج بھی کچھ زمین کے خطے ایسے ہیں کہ جن کی فطری طور پہ شکلیں جو ہیں وہ اس سے کچھ ملتی جلتی ہوتی ہیں. تو جو قوم اللہ کے قوانین کو اس طرح کرے گی نا، اس کا حال یہی ہوگا. جو اللہ بندر کو بندر بنا سکتا ہے، کیا وہ انسان کو بندر نہیں بنا سکتا؟ یہ مسخ کا عذاب ہوتا ہے. ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ ہم مازون اور لم مازون کو قیامت کے دن کتوں کی شکلوں میں بدلا جائے گا. یہ کون ہے ہم مازون لم مازون؟ ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ، عیب لگانے والے اور تانے دینے والے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جو سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھا لے تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ اس کے سر کو گدھے کا نہ بنا دے. اس لیے جب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں نا، 5-6 سیکنڈ پیچھے رہا کریں امام سے. اگر امام سکون سے نماز پڑھنے کا عادی ہے اور آپ جلدی کہیں تو ذرا ایکشن بعد میں کریں. ایک شخص تھے ایک وقت اپنے دور کے، یعنی استاد تھے، تو وہ اپنا سر منہ لپیٹ کے قرآن اپنی کلاس پڑھایا کرتے تھے. تو لوگوں نے جب بعد میں پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس مسئلے پہ شک کیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ یعنی سر گدھے کا بنا دے، تو اب میرے سر کی ایک شکل جو ہے سائڈ پہ ایسی بن چکی ہے، میں اس کو چھپاتا ہوں. مت نہ ڈر رہے انسان، وہ ذات کسی لمحے کچھ کر سکتی ہے. ایسی بیماری آ چکی ہے کہ یہ ناک جو ہے یہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں یہ تھوتھنی سی بن جاتی ہے. بہت ہی مطلب قریب کے ذرائع، اور جس کو اوتھینٹک آج چاہتے ہیں، سعودی عرب کے کسی گاؤں کی یہ بات ہوئی تھی کہ ایک شخص جو تھا وہ بالکل یعنی رات کو ٹھیک سویا اور صبح اٹھا تو اندھا ہو چکا تھا. اللہ ہر چیز لے سکتا ہے. ہمارے جسم کی ایک ایک چیز ہم سے زیادہ اللہ کی بات مانتی ہے. تو اس لیے ان ساری چیزوں کو رکھیے سامنے اور اپنے لیے نصیحت لیں. ذرا آپ اپنا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بندر بنایا گیا کیونکہ انہوں نے مچھلیاں پکڑی تھیں. یہی جملہ سنتے ہیں نا آپ، یہ غلط بات ہے. اس سے اللہ تعالیٰ پہ عیب آتا ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اتنا ظالم ہے کہ مچھلیاں پکڑنے پہ بندر بنا لے. چلیں بھائی، کیا ہوا، مچھلی پکڑی تھی، کوئی انہوں نے شراب تھوڑی بیچی تھی، کوئی انہوں نے سور کا گوشت تھوڑی بیچا تھا. یہ سزا مچھلیاں پکڑنے کی نہیں تھی، یہ اللہ کے حکم کو ڈسٹارٹ کرنے کی سزا تھی. اس کو ایسے مسخ کر کے رکھ دیا کہ کچھ بھی باقی نہ رہا. اس پہ اللہ کو غصہ آتا ہے. کیا آج مسلمان بھی کچھ ایسا کرتے؟ آپ ذرا پوچھ کے تو دیکھیے، لوگوں نے کہاں کہاں طویلیں کی ہوئی ہیں. دنیا تو رکھنی ہے، پھر بھوکے مر جائیں گے. آج کے دور میں تو حلال سے گزارا ہی نہیں ہوتا. آج تو یہ، آج تو وہ. اس لیے کبھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی تاویل نہ کریں. میں نہیں مان رہی اللہ مجھے توفیق دے، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن گناہ دیکھیے، جب بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے نا تو کسی موقع پہ اس سے بچ جاتا ہے، نکل آئے گا. اور جب آپ گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی تو تمیز ہی ختم ہو گئی. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی جگہ داخل ہو نا تو آپ کو بیڈ سمیل آتی ہے، آپ کہتے ہیں بدبو آ رہی ہے. اب جب تک آپ اس کی بیڈ سمیل کو فیل کریں گے تو آپ ڈھونڈیں گے نا کہاں سے آ رہی ہے. کوئی گندی چیز رکھی ہوئی ہے، کوئی خراب چیز ہے، کوئی جوتے کو کچھ لگا ہوا ہے. انشاءاللہ آپ پا لیں گے جگہ اور صاف کر دیں گے، گندگی ختم. اور بالفرض اگر آپ کے ذہن سے گندگی کی سمیل ہی نکل گئی तो हर और आने वाले को तो स्मेल आएगी, आपको नहीं आएगी। इसी तरह गुनाहों की भी गंदगी होती है। अल्लाह ताला हमें कभी तावीलात की तौफीक ना दे, और जो माने उसको पूरे यकीन के साथ माने। ये था दूसरा रवैया यहूद का। आज मुसलमानों के लिए भी एक क्राइटेरियन है इसके अंदर कि तुम भी अपने रवैयों को सोचो। तीसरा रवैया था हुज्जतबाजी। हुज्जतबाजी क्या होती है, मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। कोई आपसे पानी मांगता है, आप पिलाने के मूड में नहीं हैं, आप गरम गरम लिहाफ में बैठी हुई हैं, आपकी माँ ने कहा कि बेटा पानी पिला दो। एक सूरत यह है कि आप उठें और पानी पिला दें, और अच्छी बेटी हैं तो पूछने की भी कहने की भी ज़रूरत ना पड़ेगी, आप वैसे ही पिला देंगे। हैं, दूसरी सूरत है कि आप सुस्त हैं या आपको उठना नहीं, आप कहते हैं अच्छा पानी पिलाऊँ, ठंडा पिलाऊँ कि गर्म, अच्छा ठंडा, अच्छा ग्लास में पिलाऊँ कि मग में, शीशे का ग्लास लूँ कि स्टील का लूँ। इन सारी बातों का मतलब ये है कि माँ कहे कि तुम बैठो मैं खुद ही ले लेती हूँ। इसको हुज्जतें कहते हैं। जब बंदा कोई काम करना ना चाहे तो फिर उस काम के ना करने की हुज्जतें निकालता है। अगली आयतों में जो वाक्या शुरू हो रहा है वो उससे अगले रुकू में जाके पूरा होगा। इस वाक्य का बैकग्राउंड समझ लीजिए, फिर वाक्य हम एक ही स्ट्रेच में शुरू करेंगे। तीन बुनियादें हैं इस वाक्य की जो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। पहली वजह क्या है कि मिस्रियों के साथ रहते रहते यहूद के दिल में गाय की मोहब्बत बस चुकी थी, तकद्दस था। दूसरी वजह ये थी कि यहूद के अंदर वक्त के साथ साथ आखरत का अकीदा मसख हो चुका था। मरने के बाद दोबारा उठाए जाने के अकीदे पे शक करने लग गए थे कि ये कैसे हो सकता है कि मरने के बाद ज़िंदा किए जाएं। इसी तरह एक तीसरा वाक्या हुआ था, उसकी तफसीलात भी मिलती हैं, कि एक शख्स था, आमील उसका नाम था, अपने चचा की बेटी से निकाह करना चाहता था। बास जगह आता है कि चचा का वो वारिस बनता चचा के मरने की सूरत में। उसने सोचा कि ये चचा पता नहीं कब मरेगा, और या अगर पहली बार ठीक है कि उसकी बेटी से निकाह करना चाहता था तो चचा करने पे तैयार नहीं, तो कहा कि इसको रास्ते से हटा देते हैं, इसको मार देते हैं, नतीजा क्या होगा, अपना काम कर लूँगा। उसने अपने चचा को कत्ल कर दिया। अब आप सोचिए किसी सोसाइटी में कत्ल हो जाए, लाश पड़ी हुई है और कातिल का कोई पता नहीं, इस्तराब होता है ना। कोई खुद मर जाता है तो और बात है, लेकिन जब कोई इस तरह मारा जाता है तो उस पर तकलीफ होती है। और यहाँ एक बात बड़े बड़े वाज़े लफ्ज़ों में लिख लीजिएगा कि ये वाक्य जब हम पढ़ने वाले हैं ये तौरात के नज़ूल से पहले का है। और लगता ऐसे ही है कि ये भी कोई वादिय तीह का ही वाक्य है, जब बनी इसराइल फिरौन के चुंगल से आज़ाद हो चुके थे। क्यों? कि अभी तौरात नहीं निकली, पता नहीं था कि कत्ल के बाद क्या किया जाए और क्या मामला हो। और स्याही कौमों में आती है जब इतनी बातिल, तभी तो फिर किताबें नासिल होती हैं। तो लिहाजा ये मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कहने लगे जी कि ये कत्ल हो गया, अब बताएं हम क्या करें, अल्लाह ताला से कोई हमें इसका हल लेके बताएं कि हम उस पर अमल करें। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इन्हें कहो कि कोई गाय लें, गाय को ज़िबह करें, और कोई ख़ास गोश्त का टुकड़ा जो है हिस्सा किसी जगह का उतारें और मुर्दे के जिस्म को टच करें, बस ये एक मोजज़ा होगा और मुर्दा ज़िंदा हो जाएगा। और मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के किस्से में आपको मोजज़ात की कसरत मिलेगी, आप देख रहे हैं, क्योंकि जादू का बड़ा ज़ोर था और जादू और मोजज़े में बहुत सारे लोगों को गलती लग जाती है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस एक वाक्य से तीन फ़वाद इनको देने थे। पहली बात ये कि मुर्दा ज़िंदा होगा, कातिल का नाम बताएगा, फिर मर जाएगा, तो वो इस्तराब ख़त्म हो जाएगा जो सोसाइटी में फैला हुआ है। दूसरी सूरज ये है कि जब अपने हाथ से गर्दन पे छुरी फेरेंगे गाय की तो उसका तकद्दस भी तो कम होगा ना, जिसके आप रिस्पेक्ट करते हैं आप तो उनको कुछ कह ही नहीं सकते, इस तरह वो गाय की मोहब्बत कम होगी। और तीसरी बात है कि एक मुर्दे को ज़िंदा होता देखेंगे तो मरने के बाद जीने का तसव्वुर उभर जाएगा। हुक्म बिल्कुल सीधा था, मान जाओ, लेकिन इन्होंने मारना नहीं चाहते थे, अपने खुदा पे छुरी फेर दे, ये बहुत मुश्किल होता है। हर वो चीज़ जो आपके दिल में बसती है ना, उस पे छुरी फेरना बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, इनको बहुत मुश्किल लगा, मारना नहीं चाह रहे थे। अब सीधा साधा नहीं कह सकते थे मूसा को कि नहीं नहीं हम गाय को नहीं ज़िबा करते, क्योंकि फिर इस्लाम पे जद पड़ती थी कि तुम मुसलमान हो के ये अकीदा रखते हो, तो अब करने लगे तावीलें, कैसी हो, रंग कैसा, ये पूरे वाक्य में आप पढ़ेंगे कि उसका रंग, उसकी शक्ल, सूरत, उस पर इस तरह बातें करते हैं कि अल्लाह करे ना ये गाय मिले और ना हमें ये काम करना पड़े। लेकिन जितने सवाल करते गए उतने अल्लाह की तरफ से जवाब आते गए। हुआ क्या कि गाय जो बताई गई वो इंतहाई कीमती गाय थी, और रिवायात में आता है कि जो इन्होंने सवाल किए ना कैसी हो, और अल्लाह ने कहा जर्द हो, और वो खास तौर पे इस नस्ल की गाय के तकद्दस का ज्यादा शिकार थे ये। अल्लाह ने फिर डायरेक्ट इनके खुदा ही पे हाथ डलवाया कि अच्छा अब इसी को पकड़ो। फिर रिवायत में आता है कि अब जब सारी बातें हो गई तो अब गाय ढूंढे कहाँ से, किसी को यतीम बच्चे थे या कोई जरूरतमंद थे उनके पास ऐसी किस्म की गाय मिली कि जिसके जिस्म पे कोई दाग धब्बा भी ना हो, जिसका कुछ रंग भी ऐसा हो और वो हो, अब वो गाय इनकी मजबूरी बन चुकी थी। तो कहते हैं मुंह मांगी कीमत पे वो गाय खरीदी। उसने कहा कि इतने इतना सोना लूंगा इसके बदले में कि इस गाय के खाल के अंदर जितना भर जाता है, और इन्होंने दिया। और फिर उसके बाद फिर वही हुआ कि गाय के ऊपर छुरी चलाई, उसका गोश्त जो था मुर्दे को लगाया, मुर्दा जिंदा हुआ, उसने बताया कि मुझे फलां शख्स ने मारा है, तो उसके बाद वो मर गया और इनका ये शुबा दूर हुआ। तो अब इस एक पे बिल्कुल ये देखने में तो ये एक पूरा वाक्या लगता है ना, लेकिन तफसीर पूरी इसकी हो गई। किस्सों का यही फायदा होता है कि उसमें बहुत ज्यादा तफसील की जरूरत नहीं होती, सिर्फ रंग और इन बातों को देखने की जरूरत है। वइज़ क़ाला मूसा, और जब मूसा ने कहा ली कौमी ही अपनी कौम से इन्नल्लाह यामुरुकुम, बेशक अल्लाह तुमको हुक्म देता है। देखिएगा यहाँ अल्लाह का लफ्ज़ हुक्म के साथ आया है, से पता चलता है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से बात आती है तो वो हुक्म के दर्जे की होती है। कोई अल्लाह ने हमें मशवरे नहीं दिए हुए कुरान और हदीस में, ये भी हुक्म ही होते हैं। ठीक है, क्या कहा, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तस्बहू बकरा। आप चाहें तो इस जुमले को भी इन्वर्टेड कॉमास में कर लें, असल में ये हुक्म के लफ्ज़ हैं। बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है तुमको कि तुम गाय को ज़िबा करो। कालू, वो कहने लगे, यानी हैरत के मारे कहने लगे, अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, क्या तुम हमसे मजाक करते हो। भाई इसमें आप सोचिए कि मूसा के इस जुमले में मजाक वाली क्या बात थी। सवाल पैदा होता है कि इनको ये बात मजाक क्यों लगी। तो मजाक इसलिए लगी कि जिसे हम खुदा समझे बैठे हैं तुम उसको ज़िबा करने की बात करते हो। अल्लाह हू अकबर, ये तो बहुत बड़ा मजाक है। मैंने किसी का इस मौके पे कमेंट पढ़ सुना कि जैसे गाय के कत्ल की बात उनको ऐसी लगी थी, आज के दौर में वो लोग जो अपने घर में यानी टेलीविज़न का इस नज़र से इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि सारा दिन वो उनको एंटरटेनमेंट देता है, तो अगर उनसे कहा जाए कि इसको छोड़ दो या इसका इस्तेमाल बदल लो, तो उनको भी ये बात मजाक ही लगती है। कहते हैं ये तो घर का फ़र्ज़ है, आज घर में ही कोई नहीं है, अगर ये ना चल रहा हो तो जिस तरह उनको गाय की छुरी फेरनी मुश्किल थी, इस तरह उनको भी ये काम बुरा लगता है। ये किसी का कमेंट था बहरहाल। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस जवाब पे क्या कहा, काल आऊज़ु बिल्लाही अन अकून मिनल जाहिलीन, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। इससे क्या पता चला कि अल्लाह की बात तुम तक पहुँचा रहा हूँ और तुम उसको मजाक कहते हो, और ऐसा मजाक करना जहालत है। इससे ये पता चला कि मजाक जहालत है। देखिए दो लफ्ज़ हैं, एक है मजाक काफ से और एक है मजाह हा से। मजाक जायज़ नहीं है, मजाह जायज़ है। मजाक क्या होता है, लाइट बात, हल्की सी बात कर दी खुश हो गए, लेकिन मजाक अच्छी बात नहीं है। और आज इसी मजाक के नाम पे एंटरटेनमेंट खरीदते हैं, और आज आप देखिए कि हमारी तो तफरीब इतनी घटिया दर्जे की हो गई कि उसमें सास का मजाक, बहू का मजाक, ससुर का मजाक, जन्नत का और जहन्नुम का मजाक जमा कर लें तो स्टेज ड्रामे का नाम बन जाएगा। इस तरह की फप्तियाँ कसते हैं कि अखलाक से गिरी हुई बातें होती हैं। तो कौमों का मिजाज जब बिगड़ता है तो वो मजाक के नाम पर एंटरटेनमेंट को जायज़ कर लेती हैं। क्या कहा, कालुद उलना रब्बक, कहने लगे पुकार हमारे लिए अपने रब को। फिर देखिएगा रब्बक, अभी तक रब इनका नहीं हुआ, जो दिल में बसा होता है वही आता है ना, तेरा रब है हमारा नहीं है। आज भी लोग बाज़ दीनदारों के बारे में यही गुमान करते हैं कि रब तो इनका ही है, इन्हीं की सुनता है, इसलिए उनसे ही दुआएं मांग पाते हैं, खुद नहीं मांगते। हाँ, युबैयिन लना मा हिया, वो बयान करे कैसी है ये, माँ मैंने कैसी, हिया ये, हिया क्या है इधर, गाय, ये गाय कैसी है। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहू, बेशक वो, ये हु क्या है, अल्लाह की ज़ात, यकूलू कहता है या फरमाता है, इन्नहा बेशक वो, ये हा क्या है, इसकी ज़मीर करिए, हा मुअन्नस की है इधर, गाय, ये गाय, बकरतुन एक गाय है, ला फारिदुम वला बिकर, ना तो बूढ़ी है और ना बच्ची है। और फारिज उस गाय को कहते हैं जिसके दो दांत आगे के टूट कर दोबारा आ जाएं। जैसे गाय की एक ऐसी एज होती है कि दांत पहले टूटते हैं फिर आगे दोबारा आते हैं, यानी बुढ़ापे में ऐसा होता है। और बेकर कंवारी और सुबह वही वाली बात, कहा कि दरमियानी उम्र की है, अवान उम्बई नजालिक, दरमियानी उम्र की है। फफलू माता तो उमरून, बस कर लो अब जो हुक्म दिया जा रहा है। ये लफ्ज़ क्या साबित कर रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम चाह रहे थे कि अब मजीद सवाल ना करें, कर लो बस अब जो कहा जा रहा है, मान जाओ इस बात को। लेकिन इन्होंने इस बात को मानने की बजाय फिर सवाल किया, खालुद उलना रब्बक, कहने लगे पुकारिए अपने रब को हमारे लिए, यो भाई ये लना हमसे बयान करे, माँ लौनुहा, माँ मैंने क्या या कैसा है, लौन रंग हा इसका, अरबी मेरे रंग के लिए दो लफ्ज़ आते हैं, एक लौन, हम अल्फाज की वजाहत में भूल गए थे इसलिए याद लिख लीजिए, लौन कहते हैं कुदरती रंग को, और इसके ऑपोजिट एक और रंग आता है सिबगा, सिबगा कहते हैं आर्टिफिशियल कलर को, जैसे आप दुपट्टे रंगवाते हैं ना, तो उस शख्स को सबाख कहते हैं, तो लौन कुदरती रंग को कहते हैं। कहने लगे कैसा रंग है इसका, काल इन्नहु यकूलू, बेशक वो कहता है, इन्नहा बकरतुन सफरा, ये गाय है जर्द रंग की, फाक्यू लौनुहा, इसका रंग बड़ा गहरा है, तसुर्रुन नाजरीन, देखने वालों को ये बहुत खुश रखती है। नाजरीन का लफ्ज़ सुना हुआ, मेरा लिए ये वो लफ्ज़ है जिसकी वजाहत की ज़रूरत ही नहीं है। कालुद उलना, कहिए कि पुकार अपने रब को, यानी अब रंग भी पता चल गया, फिर आगे शुरू हो गए, बुला अपने रब को, पुकार अपने रब को, युबैयिल्लना माहिया, वो बयान करे कि ये किस किस्म की हो, किस जात की हो। ऐसे लग रहा है लड़की देखने गए हुए हैं, ऐसे लोग देखते हैं ना गायों की तरह भैंसों की तरह। इन्नल बकरा तशाबह अलैना, हमें तो गायों के बारे में शुबा है, शुबा कैसे है कि पता नहीं अभी क्लियर नहीं। अच्छा शुबा कहाँ था, दिल में था, सब कुछ वाजे था लेकिन मानना नहीं चाह रहे थे, तो जिस चीज़ को हमारा दिल ना माने ना हम कहते हैं पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्या करें, शुबा। तो ये कहेंगे नहीं अभी भी सही बात नहीं पता चली, वह इन इंशाअल्लाह लमुहतदून, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत पाने वाले बन जाएंगे, यानी अब इंशाअल्लाह बोल दिया। इससे पता चलता है कि शुरू में इनका जो पूछने का इरादा नहीं था या मानने का, लेकिन जब मूसा ने बार बार इनको इस बात की तंबीह की कि देखो मजीद सवाल ना पूछो, तो कहने लगे कि अब हम इंशाअल्लाह कहते हैं, और इसके बाद समझ आएगी। नबी सल्लम की एक रिवायत का खुलासा है कि अगर बनी इसराइल इंशाअल्लाह ना कहते तो क्यामत तक ऐसी गाय इनको ना मिलती। और इसी बात का हुक्म आज उम्मत मुस्लिमा को भी है कि किसी काम के करने का इरादा हो तो उससे पहले इंशाअल्लाह कह दें। सूरत अलकहफ में भी आप इसके बारे में पढ़ते हैं कि वला तकूलन ली शयइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा, ये ना कहो किसी काम के बारे में कि मैं ये कल कर लूँगा, बल्कि ये कहो कि इंशाअल्लाह, यानी अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो फिर करूँगा। खैर अब नियत चूँकि हो गई तो अल्लाह ने रास्ता भी आसान किया। यहाँ लमुख्तदून से कौन सी हिदायत मुराद है, याद कीजिए सूरह फातिहा, गाय तक हिदायत पा जाएंगे, ये वो हिदायत है जो दुनिया की हिदायत है, यानी कि गाय मिल जाएगी, ये वो हिदायत नहीं है जो गाइडेंस के मानों में होता है, यानी मतलब यह है कि अब उम्मीद है कि इतनी बातें सुनने के बाद अब हम गाय को ढूंढ लेंगे। काल इन्नहु यकूल, कहा बेशक वो फरमाता है, कौन हु कौन है, अल्लाह ताला की ज़ात, क्या फरमाता है, इन्नहा बकरतुन, वो एक गाय है, ला जलूलुन तुसीरुल अर्दा, कि जो नहीं जोतती ज़मीन को, ज़लूल नरम को कहते हैं, यानी बड़ी ऐसी है कि ना वो खेती बाड़ी करती है कि ज़मीन को फाड़े, वला तस्किल हर्स, और ना खेती को पानी पिलाती है, मुसल्लमतुल्ला शिया तफीहा, बेदाग है, स्किन उसकी बिल्कुल क्लीन है, कोई दाग धब्बा नहीं उसमें, कालुल आन जी तबिल हक, कहने लगे अब लाया है तू हक को, आप में से कोई बताए कि मैंने लाया है क्यों तर्जमा किया जी तबिल हक का, लफ्ज़ों को देखिए, जीता के बाद बा आ रहा है, ये अलहक से पहले जो बा लगी है इसने आने को जाने में बदल दिया, तो कहा जीता बिल हक, अब लाया है तू हक को, हालांकि हक तो पहले भी था, अब असल में तैयार हो गए थे मानने को, दिल ने तस्लीम कर ली, जिस बात के बारे में बहुत शुबा था, अब आहिस्ता आहिस्ता उनका शुबा दूर हुआ कि नहीं अब इसको ज़िबा करना ही पड़ेगा, इस पे छुरी फिरेगी, तो कहने लगे अब बात समझ आ गई, और फिर गाय मिली। देखिए अल्लाह ने कोई तफसीलात नहीं दी, कहाँ गए ढूंढा, बस मिल गई, फ़ज़बहूहा, बस उसको ज़िबा कर दिया, लेकिन वमा कादू यफ़लून, और ना लगते थे कि वो ऐसा करेंगे, लग तो नहीं रहा था ये करेंगे लेकिन उनको करना पड़ा। तो ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो इंसान को लगता है कि वो नहीं कर सकता लेकिन करेगा, और इंशाल्लाह इसके ऊपर अगले रुकू के पहली आयत की रोशनी में अमल के नाते से कुछ बातें होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।